नमो भगवते वासुदेवाय। सभी आचार्यों की कृपा से, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी की कृपा से और सभी गुरुवर्ग आचार्यों की कृपा से, विशेष रूप से पूज्यपाद भक्तिचार्य महाराज जी के आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं भागवत से प्रसंग। भगवान के से भक्त के लिए योजना करते हैं, पितामह भीष्म के लिए उनका मन में जो लालसा था, मन में कोई लालसा होता है भगवत प्राप्ति के लिए, ये जो भक्त संघ का ये तात्पर्य है। भक्त संघ जो करते हैं ना, मन में एक लालसा बढ़ाने के लिए, गोष्ठी आनंद में ये लाभ है, समझ रहे ना, गोष्ठी आनंदी, हम गोष्ठी आनंदी है, गोष्ठी में रहते हैं। कलयुग में हमारा स्वाभाविक आसक्ति नहीं भगवान से, इसलिए आचार्य लोग ने हमको गोष्ठी में रखे कि एक दूसरे का जो स्पिरिट है ना, कैसे गुरु का सेवा कर रहे हैं, कैसे समर्पित हो रहे हैं, कैसे अच्छा भजन कीर्तन कर, उसको दर्शन करके गोष्ठी आनंदी में एक चीज पर हमको बहुत ध्यान देना है, एनवियस नहीं होना चाहिए, उनका स्पिरिट लाना है, जो कॉम्पिटेट बोले क्या बोला कॉम्पिटेट स्पिरिट है ना उनका, करने का उनका भीतर जो स्पिरिट, हिंदी में क्या बोलते हैं, भावना और प्रेरणा है, उनका अंदर में जो प्रेरणा है गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए, भजन के लिए, उसको सीखना है हम लोग का, ये लाभ है। हम लोग का स्वाभाविक आसक्ति नहीं है ना भगवान से, इसलिए महाप्रभु ने साधु संघ पर इतना साधु संघ कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, कृष्ण भक्त प्रेम जन्म है, कृष्ण प्रेम अगर आप प्राप्त हो गया ना, तब फिर मुख्य अंग क्या है, साधु संघ, साधु संघ चलता है। ये साधु संघ में लालसा बढ़ाना है हम लोग को, मन में एक लालसा लाना है, इसीलिए हम साधु संघ कर, क्या लालसा, भगवत प्राप्ति कैसे होगा, गुरुदेव के चरण में मति कैसे रहेगा, आचार्य लोग से ममता कैसे बढ़ेगा, ये नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा अंतरंग साधु संग नहीं हो रहा है। अंतरंग साधु संग समझ रहे ना, मन का जो भावना, अंतरंग भावना है वो शुद्ध नहीं हो रहा है, अदर डिजायर कुछ रह रहा है, ये बहिरंग साधु संग हो रहा है। मंदिर में हम आते हैं, कथा सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन भावना आगे नहीं जा रहा है, शुद्ध भावना नहीं आ रहा है। जैसे आपका कोई फ्रेंड्स है, उसको फॉल कर्म कर देना, भाई तुम कैसे हो, दोस्त तुम कैसे हो, ये कैसा है, बहिरंग चीज होता है, अंतरंग चीज कैसे, आ जाओ संडे को आ जाओ हमारा घर में फिस्ट बनाएंगे, तुम आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा घर में जाऊंगा, कुछ करने के लिए जो स्पिरिट है ना, इसको अंतरंग भावना बोलते हैं। हम लोग जो दीक्षा लेते हैं, गुरु पदाश्रय करते हैं, भजन करते हैं ना, भक्तों का संग करते हैं, ये अंतरंग भावना को बढ़ाने के लिए, ये लालसा बढ़ जाता है ना, एक दिल में बैठ जाता है एक लालसा, मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना है, लेकिन ये कामना पूर्ति होता है। अभी हम क्या होते हैं, धैर्य हमारा बहुत कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पितामह भीष्म से महाराज 400 साल की, समझ रहे हैं ना आप, 400 साल ये धरती पर थे, 400 साल में सबसे बड़ा अनुभव क्या था बताइए आप, सबसे बड़ा अनुभव क्या था, काठपुतल जैसा मैं, हे तो ब्रह्मचारी, शादी नहीं किए थे, पिताजी को वचन दे दिए थे, पास में रह रहे थे दुर्योधन, और संसार में बहुत बड़ा ज्ञानी लोग के पास में थे, एक आदमी को कंट्रोल करना, दुर्योधन को कंट्रोल करना असंभव हो गया। वैसे सोच रहे थे बार बार ठाकुर जी का क्या इच्छा है, लेकिन लालसा था। जिंदगी भर जो इतना श्रम किए हैं उसका फल एक दिन में मिल रहा है, अंतिम दिन में, धैर्य रखना चाहिए। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, निरुत्साह भावना मन में आ जाता है ना, ठाकुर जी मुझे मिलेगा या नहीं, कभी ऐसा नहीं, चलो कुछ करो ठाकुर जी के लिए, अंतिम तक कृपा, एक पल पर कृपा मिलता है, बारिश होने के लिए कितना टाइम लगता है देख लीजिए, लेकिन आपका खेतीबाड़ी जो है ना, उसको साफ सुथरा करके रखना, इसको टाइम लगता है। हमारा अंतर में जो मल है, जो वासना है, जो दुर्वासना है, इतर चिंतन है, द्वेष है, इसको पहले निकालना है हम लोग को। ये फील्ड प्रिपरेशन पहले करना है हम लोग को। कृपा एक पल लगेगा, भरोसा रहना चाहिए, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत पेसिमिज्म टक चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं हम नहीं सुनने, होगा। अगर आप गुरु और कृष्ण का विश्वास है ना, पेसिमिज्म बात कभी नहीं सुन, सुनना नहीं चाहिए। निरुत्साहित, हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब सुनना नहीं चाहिए। पॉजिटिव आइडिया रखना चाहिए, क्योंकि ये सब परंपरा है। ये परंपरा को मंडित किए स्वयं भगवान भक्त रूप से चैतन्य महाप्रभु, हम इस परंपरा की। और सबसे बड़ा बल है आचार्य लोक और महामंत्र। फिर पैसे में निरुत्साहित बात क्यों हम सुनेंगे, भरोसा बढ़ाना है। और पितामह भीष्म का भरोसा था आएंगे ठाकुर जी, और साधु संग जो कर रहे हैं ना, ये लालसा बढ़ाने के लिए, होपलेसनेस होपफुलनेस। अंतरंग साधु संग करेंगे ना, भरोसा बढ़ता है, आशा बढ़ता है। भिखारी आप देखें, भिखारी भिखारी बोलते ना हिंदी में, बेगर्स जो है, भिखारी लोग, हर दिन क्या 50 रुपीज 100 रुपीज मिल जाता है, कभी ज्यादा मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन उनका भरोसा है मिलेगा, आज नहीं मिला है ना कल मिलेगा। मैं एक भिखारी देखा हूं ट्रेन में, वो एक मंदिर बना है भुवनेश्वर में, एक मंदिर बना है, मुझे बोल रहा था, बाबा साहब आप क्या सोच रहे हो, मैं भीख मांग रहा हूं मंदिर बनाने के लिए, मैं भिखारी नहीं हूं। तो इतना कॉन्फिडेंस उन लोग का हो जाता है, तो हम भगवान की माला करते फिर हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ठाकुर बाबा हम लोग को मिलेंगे। भावना भावना जो है ना, परमात्मा हृदय के भीतर है ना, वो हमारा भावना को पकड़ते हैं, ये किस आदमी है, कितना भरोसा मुझ पर करता है। अरेंजमेंट जो व्यवस्था है ना, इसी शब्द आता है। सुसाइड को मत ब्लेम दीजिए, इसका हमेशा हो रहा है परंपरा में, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें कुछ नहीं, ये परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। भगवान जब थे दुर्योधन भी तब थे, देखिए, और पितामह भीष्म के पास दुर्योधन भी थे, विदुर भी थे। हमारे प्योर डिजायर होना चाहिए, शुद्ध भावना होना चाहिए। और परमात्मा जो है ना भीतर कृष्ण है, बाहर से गुरु है, भीतर परमात्मा स्वरूप से कृष्ण है, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे, इसे बुद्धि दे देंगे, ज्ञान देंगे, बल देंगे, संग देंगे, सब कुछ दे देंगे। निराश नहीं होना चाहिए। जब युद्ध का व्यवस्था हो गया, पितामह भीष्म ने किसको चुना, दुर्योधन को चुना, उसका पक्ष में मुझे जो युद्ध करना है। ये कितना बड़ा चैलेंज है लाइफ में, सब कुछ कर सकते हैं, पांडव का विरुद्ध युद्ध करना, अस्त्र उठाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। उसे नहीं, महाभारत 18 days जो है ना, 18 दिन में सोए नहीं, दोनों सोए नहीं, ठाकुर जी नहीं सोए और पितामह भीष्म भी नहीं सोए, सोच रहे थे। ये चैलेंजेस है लाइफ में, क्योंकि भक्त का, उनको भक्त तत्व तो पता है ना, अरे भगवत विरोधी हो जाएंगे। मैं दुर्योधन का पास में हूं, हर समय मैं सुन रहा हूं निंदा, ये बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मैं अभी वैष्णव अपराधी बन जाऊंगा, भक्त विरुद्ध में मुझे युद्ध करना पड़ेगा, ठाकुर जी मुझे क्यों ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं, फिर भी कर रहे थे। ईश्वरवीर का काम है भक्त बनना, ईश्वरवीर का काम है। चैलेंजेस को इनवाइट हम लोग करते हैं, आ जाओ, मरना है ना हम लोग को, मरना नहीं है क्या, मरना है तो मरेंगे, तो फिर कैसे मरेंगे, सूर्यवीर जैसे मरेंगे, कायर जैसे नहीं। हम लोग का जीवन यही है, हमारे पास एक आश्रय है ज्यादा, मैं कानपुर में यही बोल रहा था, आश्रय, तीन आश्रय हम लोग के पास, हरि गुरु वैष्णव, आश्रय, आश्रय समझ रहे हैं ना आप, सपोर्ट है आपका, पीछे मालिक, देखे कुत्ते, कुत्ता जाता है पीछे मालिक रहता है, मालिक अगर बहुत पीछे रह जाता है ना, कुत्ता आगे चला गया और एक कुत्ता आ रहा है, मालिक क्या करता है, सीटी लगा देता है, वो बोल रहे हैं क्या, मोबाइल शायद कौन रखे हैं, देखिए ना मालिक सिटी लगा देते हैं, सीसी कर देते, इतना बोल देते क्योंकि वो भूल गए कौन कुत्ता है, वो आगे चला गया है ना, मालिक पीछे वो भूल गए, लेकिन उनका आवाज थोड़ा सुन लेता है ना, बल आ जाता है। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं, हम तो बदजीब है, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए बार बार सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, गुरु कृष्ण की बात याद आता है, इसलिए गुरु पूजा जाते हैं ना, सुनते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य, इसे कुत्ता फिर भागता है। हम लोग ऐसे भरोसा बहुत रहना चाहिए। अब व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे, हिंदी में व्यवस्था बोलते हैं ना, जो अरेंजमेंट है वो ठाकुर जी करते हैं। देख लीजिए, पितामह भीष्म शरीर छोड़ने वाले नहीं है, कृष्ण को दर्शन करके ही शरीर छोड़ेंगे। वो जिम्मेदार किसका ऊपर है? कृष्ण का। रथ में बैठे थे युधिष्ठिर महाराज ने गए, मोह हो गया मैं राजा नहीं बनूंगा, और प्राकृत आत्मनम खुद बोल रहे कि नहीं नहीं जिम्मेदारी मेरा है, इतना बड़ा महाभारत हुआ ना, इसका जिम्मेदारी मैं हूं, मुझे ही नरक में रहना पड़ेगा, मैं राजा क्या बनूंगा। और अश्वमेध यज्ञ ठाकुर जी ने किया था, भगवान ऐसे नहीं है, महाभारत युद्ध का बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि कोई लोग मेरा भक्त को यह नहीं समझना चाहिए कि ये पापी है, लोग को मारकर राजा बने। अश्वमेध यज्ञ भगवान ने कराया था, फिर भी दुर्योधन बोल रहे, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे नहीं, ये ठाकुर जी मोह पैदा किए हैं, क्योंकि एक बहाना बनाकर उनको लेना है पितामह भीष्म के पास। ये अरेंजमेंट है, व्यवस्था होता है ना जीवन में। मैं ओरिया में बोलता हूं बार बार, याद आ गया अभी, जैसे ड्राइविंग आप करते हैं, समझ रहे हैं ना आप, स्टीयरिंग, तीन चीज बहुत काम में लगता है, स्टीयरिंग एक है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, गियर भी लगता है, तो एक्सीलेटर ब्रेक स्टीयरिंग है ना। तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग पकड़ते हैं, समझ रहे ना, स्टीयरिंग हमारे हाथ में रहेगा। कोई ड्राइवर ऐसा गाड़ी चला सकता है, स्टीयरिंग किसको दे देंगे, स्टीयरिंग एक आदमी धरेंगे पकड़ेंगे, और गियर सॉरी जो एक्सीलेटर और ब्रेक और एक आदमी होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग कैसे करते हैं, ठाकुर जी मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, मैं जो बोलता हूं ना, आप गियर एक नंबर पकाइए, दो नंबर लगाइए, तीन नंबर लगाइए, स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, इधर ब्रेक लगाइए, हम ऐसे भगते हैं, हम ऐसे स्टीयरिंग कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए, लेफ्ट जाऊंगा राइट जाऊंगा, हम लोग ऐसे भाई, इससे भजन नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए। मालिक जो ड्राइवर को छोड़ा है ना गाड़ी, आपका ट्रक है ना, जो मालिक लोग है वो गाड़ी छोड़ देते हैं ना, ड्राइवर को छोड़ देते हैं, मालिक वो होते हैं लेकिन तुम ले जाओ, ब्रेक तुम्हारा है, गियर तुम्हारा है, तुम चलाओ। हम लोग ऐसे भक्त नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम छोड़ते नहीं है, जिम्मेदारी नहीं छोड़ते ठाकुर जी का ऊपर, नहीं ये आपका रेस्पॉन्सिबल है, मैं आपका शरण गया, एक भजन है। हाँ भक्तों ठाकुर लिखे है ना, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया पड़े छे तुम्हार घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर भूलिया जाना हो मरे। मैं कुत्ता हूं, सब कुछ छोड़ दिया, कुत्ता कहां रहता है, द्वार में रहता है, मैं कुत्ता जैसा हूं, साधु लोग कुत्ता जैसा है, हम झूठा खाते हैं ना, ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं झूठा खाते हैं, कुत्ता है। और जो प्रवचन क्या है, वो आवाज लगाना है, मालिक का खाता हूं ना, कुत्ता का कुछ काम नहीं है ना। आदमी अगर नहीं आ रहा है, बिल्ली को देख लिया, चूहा को देख लिया, तभी हल्ला करता है, क्यों, भोजन किए हैं ना, कुछ काम करना है। आदमी तो नहीं आए, बिल्ली आ जाता है ना, हाव हाव करता है, भाव 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 होता है, तुम क्यों इधर आए। हम लोग बाबा जी लोग क्या है, झूठा खाते हम लोग ठाकुर जी का और गुरु कृष्ण का झूठा, हमको ये शरीर उनका है, पोषण कर रहे हैं, तो बोलना है हम लोग को, हम क्या आवाज लगाते हैं गुरु और कृष्ण के लिए, थोड़ा हमारा क्या है, हम तो कुत्ता है, हमारा जीवन ऐसा है। व्यवस्था जो मैं ये पॉइंट पर क्यों, ये जो डिस्कशन हो रहा है ना, सबसे बड़ा चीज है, मैं तो तात्विक दृष्टि बोल रहा हूँ, लीला दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। हमारे डिपेंडेंसी जो है, निर्भरता, हिंदी में निर्भरता बोलते हैं ना, उसको ठाकुर जी को ऊपर पढ़ाना है, और ठाकुर जी हमारे लिए व्यवस्था कर देंगे, मेटेरियली स्पिरिचुअली, भौतिक जो चीज चाहिए या आध्यात्मिक जो भी चीज चाहिए, कंट्रोल छोड़ना होगा हमको। ये मोह जो पैदा हुआ है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर तत्व है, जिसे अलग एक श्लोक में बोल रहे हैं, अहोमे सुबह हम सुन रहे थे, अहोमे पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनम पारक्यस्यव देहस्य बहुभ्यम अक्षुणी हतः। बहुत अक्षुण सेना मेरे लिए, सिर्फ मेरे अज्ञान के लिए हत हो गए, मर गए। भागवत शब्दब्रह्म है। शब्दब्रह्म हर शब्द में भगवान की शक्ति है। अहोमे पशु पश्यत अज्ञानम, अज्ञानम नहीं, पश्यत अज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनम। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरे राजा बनने के लिए देखो कितना आदमी मर गए मेरे लिए, मैं राजा बनूंगा। युधिष्ठिर, ये किसका योजना था? युधिष्ठिर का था, पांडव लोग का था? नहीं, भगवान के। महात्मा लोग के स्वभाव क्या है पता है आपको? छोटा दोष, वो दोष नहीं है फिर दोषी मानते। ठाकुर जी क्यों उनको पकड़ लेते हैं? ठाकुर जी महात्मा लोग को इतना प्रेम क्यों करते हैं? संसार में सब दोषी है, दोष नहीं मानते, लेकिन साधु जो है ना वो दोषी नहीं है फिर भी बोलते हैं ठाकुर जी मैं पापी, मैं पापी, मैं गंदा आदमी, सबसे सुंदर आदमी है ये, लेकिन उनका भाव है, इसलिए तो ठाकुर जी का, ठाकुर जी उनको प्रेम करते। ठाकुर जी क्यों प्रेम करते? जिसका दोष नहीं है वो दोषी मानता है। आप देख लीजिए, कोई दोष नहीं किए है ना, वो खुद नहीं नहीं मेरा गलती हो गया, मेरा गलती हो गया, नहीं भाई तुम्हारा कुछ गलती नहीं, आपका सर कैसे, कभी देखे है ना, सुना है ना, नहीं नहीं आपका कोई दोष नहीं, आपका बिकल जाता है। भक्त जो है ना हर समय सोचता है मैं पापी हूं। महात्मा का यही स्वभाव है। तीन तरह के आदमी होते हैं, जो फर्स्ट क्लास के डिवोटी होते हैं ना उनका दोष नहीं है, वो दोष मान लेते हैं, दोष कुछ भी नहीं है, दोष ही समझते हैं हर समय। ये उत्तम अधिकारी लोग का लक्षण है, जिसे कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी ने बोले है ना चैतन्य चरितामृत में, मल में जो कीड़ा है पूरी शहर कीटा है आमी से लगिष्ट, जगाई मादाई होते आमी से पापिष्ट। मल में जो कीड़ा है इसे भी मैं छोटा हूं, मेरा नाम मत लीजिए। अगर कोई बोलता है मेरा नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका पाप हो जाएगा, उनका पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरा नाम मत लीजिए। हमारा जो परंपरा इतना उज्जवल परंपरा है, कितना आचार्य लोग का पिता माता ठिकाना बोलता है ना हिंदी में, कुछ भी नहीं है। जिसे बोलते विद्याभूषण, गुड़िया वेदांत भाष्य लिखे हैं, गोविंद जी उनका आदेश दिए, उनका ठिकाना नहीं, पिता माता का नाम नहीं लिखे। जैसे लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, दो तीन भक्त जब कृष्णदास कवरेज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, स्वप्न में आए, बोले देखो हमारा जीवन चरित्र कुछ भी नहीं लिखना है चैतन्य चरितामृत, शरीर नहीं है इस धाम में, इस स्थान में, वो इतना छोटा समझते थे। भगवत प्राप्ति हो गए हैं, स्वप्न में आए और बोल रहे थे कृष्णदास हमारा बारे में कुछ नहीं लिखना, इसलिए चैतन्य चरितामृत लिखे कृष्णदास आदेश है उन लोग का, सिर्फ उनका नाम लिखता हूं और उनका बाबत में कुछ मैं नहीं लिखूंगा। ये भक्त है, ये भक्त है, हम लोग क्या भक्त है? लेकिन हमारा अचीवमेंट यही है, मैं पापी हूं, छोटा आदमी, गंदा आदमी, भगवान पवित्र है, तुम्ही तो पवित्र पद अमी दुराशय, मेरा आशय अंतर में हर समय गंदगी, गंदा चीज है, द्वेष है, ईर्ष्या है। जो शुद्ध भक्त है उनका अंतर में ऐसा नहीं है फिर वो मान लेते हैं। देख लीजिए, जात शरीर छोड़ दिए थे फिर स्वप्न में आकर बोल रहे थे हमारे बाबत में कुछ नहीं लिखना है। कितना सुंदर परंपरा सीखा है। जो महात्मा हो, तीन मैं बोल रहा था, फर्स्ट क्लास की जो आदमी होते हैं ना, फर्स्ट क्लास के डिबोडी जो होते हैं, उनका दोष नहीं है लेकिन हर समय सोचते मैं दोषी हूं, इसलिए उनका भजन फर्स्ट क्लास की भजन है। और सेकंड क्लास जो होते हैं ना, अपना दोष मान लेते हैं, दोष है उनको बोलने से मान लेते हैं, उन लोग का फ्यूचर अच्छा है वो मान लेते हैं, हाँ मेरा दोष है। और थर्ड क्लास का जो दोष दिखा देने से वो नहीं मानेगा, ये मेरा दोष है, गुरु बोलते हैं, वैष्णव लोग बोलते हैं, हम भजन कर रहे हैं इसका क्या प्रमाण है? तो मैं भागवत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, क्या करे ठाकुर जान लेता हूं, मैं बोल देता हूं ऐसा। हम भजन करें क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है जब हमारा दोष हमारा सामने आ जाएगा। परमात्मा है ना, दिखा देगा तुम्हारा ये दोष है, ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब भजन में थोड़ा कमी है। फिर भी हम भजन कर रहे, सेवा कर रहे हैं ना, वैष्णव लोग के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से दोष हमको दिखाई देंगे, ये मेरा दोष है। इसका बावजूद अगर हम नहीं मानेंगे तो हम थर्ड क्लास हो गए, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज का कोई दोष नहीं, लेकिन सोच रहे थे मैं अज्ञानी हूं, मेरे लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ। अरे एक सुंदर विशेषण दे रहे हैं शरीर का, पारक्यस्य एव देहस्य, ये शरीर पारक्यस्य, जो शरीर के लिए तो हम इतना चिंता करते ना, किसका है? पराई का है, समझ रहे हैं ना, किसका है शरीर? आपका है। छोटा बच्चे जब थे, मां जी का था, है ना, मां जी गोद में, ये मेरा लड़का है लड़की है, जब पढ़ाई किए, शरीर किसका है? टीचर का। 8 घंटा 10 घंटा के लिए, सुबह 10 बजे जाते हो, 4 बजे आते हो, टीचर ले गया शरीर। नौकरी किए, कंपनी का। पर देखो इस शरीर पराई का है, ये भागवत है, ज्ञान देते हैं आपको। मैं क्या बोल रहे हैं, बकरी जैसा लोग आजकल बोलते हैं, मैं मेरा मेरा, अरे भाई तुम्हारा नहीं कुछ, किसके लिए कर रही हो पराई सब? देखो और शादी कर लेते हैं, किसका है? पत्नी, पत्नी पत्नी बोलते हैं। पहले शादी से पहले पिताजी माताजी बोलते हैं ये मेरा लड़का है, जब शादी कर लेते हैं तो 50% गया। पत्नी बोलते हैं नहीं मेरा पति है, अभी 50% पिताजी का है, और लड़का हो गया ना 100% गया। ये सब पराई का है, हमारा नहीं, दूसरे के लिए हम काम कर रहे हैं। और अंतिम में किसका होगा? सुन नहीं, भस्म कृमि भिष्टा हुए सकल घृण्यत हुए, 3 चीज ये ओनर कौन है शरीर का? भागवत में दो बार ये प्रसंग आए, 2-3 बार इस प्रसंग आए, नारद मुनि बोल रहे इस शरीर का मालिक कौन है? कौन है पता नहीं, आज तक शास्त्र निर्णय नहीं किया है, लेकिन इससे पता चलता तीनों मालिक है, आग भूमि सियार और कुत्ता, ये मालिक है इस शरीर का। जैसा ये आहुजा, ये कौन सा कंपनी, आहुजा का है ये, देख लीजिए कंपनी निकला ना, ये माइक स्टैंड फोन निकलना के बाद वो डीलर को दे दिया, डीलर को देने के बाद हम अभी यूज कर रहे हैं, ये किसका हुआ? लास्ट में जो यूज करता है हम मालिक है ना, अभी आहुजा नहीं बोल सकता ये मेरा है, हम यूज करते हैं, जो लास्ट में कंज्यूम करता है वो लोग ओनर होते हैं। तो वो शरीर अभी पराए का है, पराए के लिए हम कर रहे हैं, तो लास्ट में कौन कंज्यूम करेगा? अग्नि, आग में फेंक देंगे, बस मिट्टी में गड्ढा करके डाल देंगे तो कीड़ा बन जाएगा, हो गया ना, कीड़ा कंज्यूम करेंगे ओनर, ये पारक ये पराए का है, ये भागवत है, बाणी अवतार है। साधु लोग बुद्धू आदमी नहीं है, भगवान की भजन कर रहे हैं, पिताजी को छोड़ दिया, माताजी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिए? आपका ममता है, हम लोग का ममता नहीं है क्या? हम लोग का ममता नहीं है क्या? हमारा पिता माता नहीं है क्या? वो परेशानी में नहीं है क्या? लेकिन जो वास्तव सत्य ना ठाकुर जी को दिखा देते हैं, प्रभुपाद जी आकर हमको दिखा दिया, यही वास्तव सत्य पराई का है शरीर। उड़िया में कहावत है, उड़िया पद में है, नंगा होकर तुम आए हो, नंगा होकर तुम जाएंगे, कपड़ा तो इधर का है, कपड़ा पहनने वाला कोई नहीं है इधर, सब नंगा होकर आए, और फिर नंगा होकर आए कपड़ा पहन देते पराई के लिए, गधा जैसा काम करते, फिर मरने से पहले कपड़ा भी उतार लेंगे जमराज, चलो भाई पराई का है, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आचार्य लोग कितना सुंदर सुंदर पद लिखे हैं, सब परे के अपना करी, दूसरे को अपना जन मानते हैं, समझ रहे हैं ना आप? ये तो साधारण आदमी के लिए, आप लोग भक्त लोग, इसलिए मैं बोल देता हूं, पिताजी बोलते ना ये मेरा पिताजी, ब्रह्मदास जी, पिताजी माताजी क्या है, पराए पराए, कहां थे वो, आपका जन्म क्यों वही पिताजी से हुआ, क्या पिछला जन्म में वो पिता थे क्या, पिताजी जब चले जाएंगे तो संपर्क रहेगा, क्यों क्यों आप, आपका पिताजी से आप क्यों पैदा हुए, माताजी से क्यों पैदा हुए, इस परिवार में क्यों पैदा हुए, बताए। मैचिंग सेंटर देखे हैं आप, मैचिंग सेंटर, मैं ज्यादा शिक्षित लोग नहीं हूं सिर्फ इसलिए बोलता हूं, मैचिंग सेंटर है, सब चीज मिलता है, इधर तो ज्यादा नहीं, विदेश में मैं देखा हूं बहुत बड़ा बड़ा हाल है, इसमें सब कुछ है, ए टू जेड सब कुछ मिलेगा, आजकल मिल रहा है अभी बड़े बड़े सिटी में, मैचिंग सेंटर जैसा है, मैच करते हैं सब मिलेगा, साड़ी कैसा साड़ी है, ऐसा पैंट है, ऐसा शर्ट है, सब मैचिंग चीज मिलता है सब, ये मैचिंग सेंटर है, एक परिवार जैसा है, समझ रहे हैं ना, जब पति और पत्नी दोनों सहवास करते हैं तो भगवान देखते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देह उपपद्यते, ठाकुर जी देखते हैं, अच्छा ये संतान चाहते हैं, उनका कर्मफल क्या है, ठाकुर जी देख लेते हैं, अच्छा है ये पति का कर्मफल यही है, ये 30% सुख मिलेगा उनको, 70% दुख मिलेगा, अच्छा पत्नी का क्या है, उनका भी मैचिंग है, आपको ऐसे पति पत्नी कैसे शादी करते हैं, वो देखते हैं ना सुख दुख मिलता है कि नहीं, आपको 30% सुख मिलना है और 70% दुख मिलना है, किससे मिलना है, ऐसे आदमी को ठाकुर जी भेज देंगे, और इसको ही पत्नी मानेंगे आप, ये मेरा पति, क्या बोलते पति देवता है भाई, देवता है इसीलिए कर्म फल तुमको भोगना है भाई, ये तो ये भागवत तत्व है, आजकल तो भागवत बोलना बहुत मुश्किल है, आजकल तो ये क्या बोलते हैं, हमारा गुरु जी से बोलते हैं स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर सब है, गल्प बोलते हैं, भागवत क्या बोलते हैं, भागवत सुनने से डर लग गया, भाग कर चले जाएंगे आदमी, बोलेंगे बाबा जी गाली दे रहे हैं, आजकल भागवत क्या है, बोलना है तुम भाई तो आराम से रहो, बाल बच्चा को लेकर रहो थोड़ा, आजकल ऐसा चल रहा है ना, नहीं नहीं भगवान देख रहे हैं, अरे कैसे लड़का दे रहे हैं आपको, आपको क्यों, आपको पिताजी से जन्म हुआ, पिताजी को कितना परसेंट सुख मिलेगा दुख मिलेगा, उनका कर्म फल है ना, देखिए हस्बैंड वाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शांति से जी रहे थे, ऐसे लड़का आ गया पूरा दुखी बन गए, क्योंकि उनको भोग करना था ना, प्रारब्ध है ना, ऐसे लड़का लड़की को ठाकुर जी भेज देंगे, तो इधर एक ऑफिस में काम करने वाले कि आपका खुद आदमी होते हैं, टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, एक आप क्या बोलते हो, सेम ऑफिस का आदमी हो, एक पिताजी का नहीं हो आप, अलग अलग, हम लोग कैसे, पिता माता जो है ना, एक कर्मफल मैचिंग होता है, मैचिंग सेंटर है, इसको पकड़कर हम जीते हैं, पारकस्य एव देहस्य, इस शरीर अभी पराय का है, और अंतिम में क्या होगा, इसका अलग सियार कुकुर बस भस्म कृमि विष्टा हवे, मल हो जाएगा, सियार कुकुर खा लेंगे बस हो गया मल, कीड़ा हो जाएगा, इस शरीर के लिए कितना ममता है लोग का, करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लाख लाख रुपया बाथरूम में, बाथरूम बोलते हैं आजकल, बाथरूम में नहीं बोलते, क्या बोलते, पहले था लिखते थे लैटिन है, लैटिन, उसका बाद क्या है, बाथरूम, अभी क्या बोल रहे हैं, तुम जो भी बोलो भाई, तुम्हारा शरीर में भीतर तो मल है, तुम वीआईपी बोलो, अमेरिका में रहो, तुमको तुम्हारा शरीर क्या है, जो भी तुम खाते हो ना मल बनता है, भीतर वही मल है, तुम वॉशिंग रूम लो कहो, कुछ भी लिखो, हमने मानने वाले हैं, ये सब क्या है, ये सब फालतू चीज है भाई, तुम बोल दो मैं मल त्याग कर रहा हूं, भीतर मल है, वॉशिंग रूम लिख देना से तुम्हारे भीतर मल नहीं है क्या, ये सब दिखावट है, ये सब दिखावट है, ये चल रहा है आजकल, इसको सभ्यता बोल रहे हैं, भीतर में कितना मल है, जो खाते हैं वो सब मल हो जाता है, और फिर ये मल ईर्षा द्वेष आसक्ति काम क्रोध ये भी मल है, ये मलवाही शरीर बोलते हैं, मल को वाहन करके लेता है और कुछ नहीं, जैसे अब देखे ना रेलवे में मालवाही गाड़ी जाता है, मालवाही बोलते ना हिंदी में, मालगाड़ी में रहता है ना, ये पूरा लोड होकर जाता है, ये शरीर ऐसा है, खाली मलवाही मल है, भीतर बाहर, देखो गर्म दिन आ गया ना पसीना निकलेगा, चलो लोग बोलते मेरा कपड़ा गंदा हो गया, तुम्हारा कपड़ा गंदा है या तुम्हारा शरीर गंदा है भाई, कपड़ा क्या दोष है? कोई शरीर को कुछ नहीं बोलता है, सब बोलते मेरा शरीर अच्छा है। भाई ये जो पसीना निकला ये कहां से, कपड़ा से निकला? देखो बुद्धि के सामने का हो गया है, ये पारक के बदस्य, इतना आसक्त नहीं रखना चाहिए। लेकिन भक्त लोग के लिए हमारा शरीर में आसक्त नहीं है, लेकिन हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, अवहेला नहीं करते, क्योंकि इस शरीर में हमको भगवान की सेवा करना, इसका पीछे नहीं पड़ना है। इस शरीर में ऐसा हो गया, दुबला पतला हो गया, थोड़ा विटामिन लेना है, ये लेना है वो, भाई चलो शरीर को, शरीर तो शरीर है, शरीर ऐसा जन्म और मरण इच्छा से नहीं होता है। अगर मैं इच्छा करूंगी आज मर जाऊंगा, नहीं होगा भाई, होगा नहीं। अब गाड़ी का सामने जाओ, मरेंगे नहीं तो जी जाएंगे, ये तो प्रारब्ध है। मरण क्या है? प्रारब्ध जब अंतिम हो जाता है तब मरण होता है। जन्म क्या है? भोगने के लिए, जो कर्म किया है ना भोगने के लिए, फिर एक शरीर धारण करना पड़ता है, वो जन्म है, ये हमारा हाथ में नहीं। ये पारक कैसी है, शरीर का ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। भक्त लोग भोजन दो टाइम प्रसाद मिल गया, प्रभुपा जी बोले है ना दो टाइम प्रसाद लेना है, 6 आवर स्लीपिंग, 8 घंटा सेवा करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना है। शरीर दुबला पतला हो या मोटा हो, कुछ भी हो, चलो भाई ये चलना है हम लोग को। पारक किस्य बदस्य, बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए शरीर का, और डॉक्टर के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो लोग ज्यादा भटका देते हैं। आपका शरीर में ये विटामिन नहीं है, वो हो गया, ये हो गया, जाओ तो डॉक्टर के पास मेडिसिन बता देते हैं। हम लोग का मेडिसिन दवाई यही है, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शरीर वो तो प्रारब्ध से मिला है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए जितना चाहिए उतना एनर्जी हम लोग को चाहिए। ये मोह हो गया है भगवान की इच्छा से, जो युधिष्ठिर महाराज का, इसलिए ये बोल रहे हैं मेरा अज्ञान को देखो, पारक किस्य एव देहस्य बहुव्य अक्षण हतः, मेरे लिए कितना ये शरीर जो पराई के लिए, प्रभुपाद जी ही लिखे, कुत्ता आरसीआर आचार्य लोग यही लिखे, हाँ प्रभुपाद लिखे ना कहा है, हाँ यही, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है। देखिए प्रभुपाद तात्पर्य लिखे परोपकार के लिए, हम लोग वैष्णव लोग का शरीर क्या है? परोपकार के लिए। देख लीजिए प्रभुपाद जी की दया से आप लोग भक्त बने, जैसे युवक लोग भक्त बने, अगर ये भक्त नहीं होते तो आपका दोस्त क्या कर रहा है अभी, पिता है कि नहीं? शराब पीता है, शराबी, 90% शराब। देख लीजिए ये परोपकार नहीं है, करोड़ रुपया खर्च करता है गवर्नमेंट शराब छुड़ाने के लिए, एक भी करोड़ रुपया, कई 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, एक भी शराब नहीं छोड़ते। देखो हम लोग क्या करते हैं बाबा जी लोग, ये परोपकार नहीं है, लोग नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, ये क्या करते बाबा जी लोग, क्या करते हैं हम लोग, ये परोपकार। संसार में जितना बड़ा उपकार है, भक्ति दान सष्टा गुरु कहा करते थे हमारा टाइम नहीं है दूसरा परोपकार करने के लिए। जैसे कोई मेडिकल है ना, चिकित्सालय, वो खोल देते हैं, गरीब लोग को खाना पीना देना, ये उपकार से सबसे बड़ा, ये आत्मा का उपकार है, ये शरीर का उपकार है, ये आत्मा का उपकार कर। ये क्यों दुखी है, क्यों रोगी है, क्यों उनका पास पैसा नहीं है? आपको पता है जो भिखारी लोग है ना 90%, मैं खुद ही देखा हूं। मैं आज सन्यासी बना, पहले से तो ब्रह्मचारी था ना, मैं लोकल ट्रेन में जाता था मेरा पूरा जीवन, 3 साल से पहले मैं लोकल ट्रेन, लोकल बस, पैदल में जाना मैं मेरा हैबिट है। मैं देखता था वो लोग क्या करते थे, आप पैसा दे दीजिए ना तत्खेड़ा तो मच मछलियां खरीद देंगे, नहीं तो शराब पी लेंगे, 90% मिस यूज करते हैं। इसलिए प्रभुपाद मना किए, भिखारी लोग को पैसा नहीं देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। और मैं तो देखा हूं, मैं देता था, भागवत पढ़ लिया ना, मैं कोमल श्रद्धा था, मैं दे रहा था, और मेरा सामने, मैं उतरा ट्रेन से, वो भी उतरा और गया पी लिया मेरा सामने, मैं बोला क्या किया, मैं 5 रुपया दे दिया, देखो पी रहा है, तब से मैं छोड़ दिया, यार ये देखो ये मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए वो गरीब है। ये परोपकार जो है ना भगवान भक्ति में लाना, सबसे बड़ा उपकार। एक जीव क्यों दुखी है, ये प्रीचिंग मोमेंट है ना, हर भक्त शुद्ध भाव से प्रचार जो हमारा है ना यही है, ये भगवान के भक्त बनना चाहिए, सुख में रहे, ये हमारा प्रयास है। हमारा ये नहीं कि ये पैसा वाला है वो ज्यादा पैसा देंगे इसलिए वो भक्त बने, नहीं, ये मेटरल मोटिव हम लोग का नहीं। चाहे भक्त क्या बोल रहे हो गरीब हो धनी हो कोई भी हो, सब तो दुखी है, सब दुखी है, ये परोपकार है, प्रभुपद ये बोल रहे हैं। जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक ये परोपकार के लिए होता है, और मरने का पश्चात ये कुत्ते तथा श्रृगाल के द्वारा, ये कीड़ों का द्वारा खा लिया जाता है, ये होता है ये पारक्य। देखिए प्रभुपद यही लिखे हैं, ये आचार्य लोग लिखे हैं ना, प्रभुपद तात्पर्य में ही लिखे, इसलिए बहुत सावधानी से प्रभुपद तात्पर्य पढ़ना चाहिए और इसको नोट बनाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है ना, फिर आचार्य लोग का टीका के पास जाइए, देखेंगे सब कुछ प्रभुपद का प्रपट में है। हमारे गुरुदेव क्या करते थे, एवरीथिंग इज इन इसकन, एवरीथिंग इन श्रील प्रभुपद बुक्स, देयर इज नो नीड, अंग्रेज में गुरुदेव बोलते नो नीड फॉर द इसकन डिवोटीज टू गो टू अदर इंस्टीट्यूशन फॉर हायर टीचिंग्स, एवरीथिंग इज इन प्रभुपद बुक्स, सब कुछ है, आपको दिखना पड़ेगा, आचार्य है ना, तब तो सब है। प्रभुआचार्य लोग का सब जो मत है ना, प्रभुपद सब्जी सब कुछ दिए हैं परपट में, इसलिए जो भक्त लोग हैं विशेष रूप से प्रभुपद ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रभुपद ग्रंथ पहले पूरा 2-3 बार कंप्लीट करने का बाद दूसरा ग्रंथ टीका वगैरह जो भी पढ़ना पढ़ना है। प्रभुपद इस शास्त्र ऋण है के है, आपको पता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, जीव गोस्वामी ने बोले शास्त्र जो आचार्य लोग शास्त्र लिखे हैं ना, हम अगर ना पढ़ाई नहीं करेंगे भजन भी नहीं होगा, ये शास्त्र ऋण रहता है। आप मत सोचिए कि प्रभुपद ग्रंथ में मैं पढ़ा हूं, ठाकुर प्रभुपद जी की दया से टाइम मिला है मुझे बहुत, 10-12 साल में पढ़ा हूं, जितना टीका मैं देखा हूं एसन सब इधर है, पूरा संस्कृत में नहीं पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी प्रभुपद की दया से गुरु जी की दया से संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत की टीका जितना है सब पढ़ के, भागवत गीता दूसरा दूसरा कमेंट्री में देखा, एसेंस जो है कि मैं मिलाता हूं प्रभुपद, प्रभुपद क्या बोले सब प्रभुपद के ग्रंथ में। इसलिए कोई दुख नहीं करना चाहिए, भक्त लोग कभी कभी दुखी बन जाते कि मुझे टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, ये सार है। आचार्य लोग की शिक्षा पर ममता बढ़ाना, शिक्षा पर टिक कर रहना, ये शिक्षा का, ये ज्ञान का सार है। बालादीजस्रोहन मित्रम पितृभातु गुरुद्रोहम नमे स्यात् निरयन मोक्ष यपि वर्षायुतायुते। मैंने अनेक बालकों ब्राह्मणों शुभचिंतक मित्रों गुरुओं को तथा भाइयों का वध किया है, भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा पाने सकूंगा। युधिष्ठिर महाराज का बोल रहे, बहुत पश्चाताप कर रहे थे महात्मा लोग है ना, ये तो मोह हो गए, ठाकुर जी तो पितामह भीष्म से ज्ञान प्रकट करने के लिए उनका अंदर ही मोह लाए, याद आ रहा है पहले बोल रहे बाल, महाभारत युद्ध में बालक का वध हुआ था, कौन सा बालक, अभिमन्यु, श्री अभिमन्यु ने द्रौपदी का, और विशेष करके अभिमन्यु का जो वध हुआ ना, इसका कारण कौन मान रहे थे, युधिष्ठिर मान रहे थे, क्योंकि अभिमन्यु जाने से पहले युधिष्ठिर बार बार पूछ रहे थे, दादा मैं भीतर चला जाऊंगा पिताजी, लेकिन वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये प्रोमिस की तुम भीतर जाओ, वापस आने के समय बाहर आने के समय हम लोग मदद करेंगे। इसलिए अभिमन्यु बद्ध होने का बाद युधिष्ठिर महाराज जंगल जा रहे थे, कृष्ण को बोले मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, राजा नहीं बनूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा। आज याद आया मेरे लिए अभिमन्यु जैसा लड़का ये काल है, भगवान की इच्छा जो है ना वो बलवान है, तव इच्छा मत जत ग्रह गण अभिरत शुभा शुभ फल करे दान, क्या बोलते हैं ग्रह ग्रह समझ रहे हैं ना, हाँ जो ग्रह नक्षत्र होता है, अभी क्या शनि है, लोग कुंडली वाले को दिखाते हैं ना, देखो देखो मेरा भाग्य क्या है। अरे हम लोग का भाग्य तो कुंडली वाले कुछ नहीं बोल सकते हैं। भक्त लोग कभी कुंडली वगैरह ये तो है, वो विद्या है, लेकिन हमारा भाग्य वो निकालने वाला नहीं है कभी नहीं। क्यों पता है आपको क्यों? एक दिन में कृष्ण हमारा भाग्य को बदल देते हैं। अगर हम शरणागत रो रिए रो लिए ठाकुर जी के सामने, आज एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। मुझे मैं तो बाद में जब पढ़ा मुझे ये पता चला, जो तांत्रिक सही तांत्रिक होते हैं वो कभी भक्त का ऊपर प्रयोग नहीं करते हैं, और जो सही कुंडली वाले होते हैं वो कभी भक्त का भाग्य नहीं बोलते हैं। बोलते तुम्हारा भाग्य हमारे पास में नहीं, हमारे कैलकुलेशन में नहीं है, ठाकुर जी के पास है। मुझे एक बोला था ऐसा कि क्यों बोला था, मैं खुला आदमी बोल देता हूं कि हमारे गुरु जी तो चले गए, मेरा तो इच्छा नहीं था ये सन्यासी वगैरह लेना, भाई भजन करो थोड़ा जी जाओ, मुझे तो सेवा अच्छा लगता है। अच्छा ये सन्यासी डंडा पकड़कर घूमना ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं बोला कि भाई मैं छोटा आदमी हूं, मैं सन्यासी कैसे लूंगा, मेरा गुरु जी नहीं है, लेकिन डिबोट लोग बोल रहे हैं, महाराज लोग बड़े बड़े महाराज लोग बोल रहे हैं। अच्छा थोड़ा मेरा भाग्य में है कि नहीं दिखना चाहिए ना किसको पूछो, ये मेरा दिल आ गया है उस समय। घूमते घूमते मैं प्रचार में गया था, वो एक डिवोटी को पूछा भाई ऐसा है, वो बोला इधर है कि बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, वो बोल देता है, क्योंकि मैं मुझे तो कॉन्फिडेंस चीज चाहिए, क्योंकि गुरुजी नहीं है ना सन्यासी, ये छोटा काम नहीं। मैं उनके पास गया, वो मुझे देखते देखते बता दिया, देखते ही बोल दिया आप लोग का भाग्य हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आप चलिए आपका ये बोल दिया। मैं बोला ये सही आदमी है ये सही आदमी, मैं तो वीकनेस में चला गया था, क्योंकि ये सन्यास का काम है, जो कन्फर्मेशन मुझे चाहिए। तो डर लग रहा था कि गुरु जी नहीं है ना, गुरु तो बोल देता ना तो बल आता है, तो मन में कन्विंस होना चाहिए। तो वो देखते देखते ही बोल दिया नहीं आप लोग का भाग्य कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान आप लोग भगवान के होते हैं ना, ये तिलक लगाने वाले जो होते हैं ना, माली पन्ने वाले जप करने वाले, उनका भाग्य भगवान के हाथ में, हमारा पथ है ये। अगर ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह को हम ज्यादा विश्वास करेंगे ना, ये नाम अपराध हो जाता है, नाम का नाम साध्य और साधन, नाम क्या बोलते हैं श्लोक अभिन्नत्वांग, फिर और नाम कर रहे हैं, अगर इसको विश्वास ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, नाम अपराध हो गया, नाम अपराध हो जाता है, ये नाम अपराध में जाता है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो कर्मकांड की सेक्शन में है। हमारा एस्ट्रोलॉजी क्या है, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, आप 30% सरेंडर है ना, 30% आपका भाग्य बदल गया, कल 40% हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, फिर कल घट जाएगा, ठीक है। भाग्य कौन बोल सकता है, इसलिए आप देखते हैं ना हाथ में ताली देकर आप ट्राई करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में जो सेक्शन है ना, एक सेक्शन में नहीं होता है, जो क्या बोलते हैं कुंडली में, कुंडली वाले नहीं, तीन चार चीज मिलाने से परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी आता है। ये भक्त लोग कभी उन लोग का चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर आप नाम को विश्वास नहीं करेंगे, मेरा भाग्य में यही है यही है, फिर वही चिंता है, कृष्ण है कृष्ण, हस्तरेखा है, देख लीजिए वो बदल जाता है, ताली बजाकर कीर्तन कीजिए वो बदल जाता है, इसलिए ताली बजाते हैं लोग भक्त लोग ताली बजाते हैं, इसीलिए शरीर से पाप चला जाता है और भाग्य बदल जाता है। ये जो ताली नहीं बजाते हैं ना, लोग बोलते ताली बजाओ इसीलिए बोलते ताली बजाओ। और कपाल का रेखा है, कपाल में देखिए सबका कपाल, वो क्यों ये क्यों बीच बीच में बोल रहे हैं नहीं 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 को किसका यू कनेक्शन क्या मुझे पता नहीं, हाँ ठीक है बोलने दो, वो बोलती है बीच बीच में आजकल सब जगह माता जी बोलती है सब जगह फ्लाइट में जाओ मोबाइल में कहाँ भी है माता जी बोलती है, आजकल पुरुष को ही नहीं आजकल ऐसा जमाना आ गया। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ कपाल में देखिए रेखा है, ऐसा आप ऊपर कीजिए, देखिए आप कितना कैसा रेखा है, ऊपर ऐसा कर दीजिए देखिए कितना रेखा है। सबका रेखा अलग अलग होता है, हाथ हस्त रेखा होता है, कपाल की रेखा, और पांव में भी रेखा है। इसको मिलाना, इसको मिलाना, तीनों को मिलाना है, फिर आपका जो जन्म का टाइम है ना उसको मिलाना, जो ये परफेक्ट होता है तब कैलकुलेशन। और इसका ऊपर एक चीज होता है, यही है भगवान की भजन। भाग्य साधुओं को भी बदल देते हैं। हमारा मैं सुन रहा था एक प्रोफेसर, इवन ए प्योर डिवोटी कैन चेंज योर डेस्टिनी। प्योर डिवोटीज प्रोपद, डिवोटी लोग पूछ रहे थे ना प्रोपद, हमारा कोई पिछला जन्म का स्वीकृत है? प्रोपद नहीं, मैं दे रहा हूं। तुम्हारा क्या था? मैं दे रहा हूं। सोल्स ये लोग है, कोई शुद्ध भक्त का सामने है, रोता है, उनका शरण चला जाता है, कल उनका भाग्य बदल जाता है। हमारे पास अस्त्र है। ये तो बालक इसमें मैं आ गया। बाल द्रौपदी का पांच लड़का और कौन अभिमन, और वो कारण समझ रहा था बालक। और सुहोत, सुहोत में कौन आएगा? क्या टीका लिखे हैं सुहोत? ओमिपस्य अज्ञानम, नहीं नहीं इसका बात है, श्लोक है। हाँ, बाला अभिमन्यु उपलक्षण आदयो, उपलक्षण जो है पांच द्रौपदी के पांच लड़का, बहुत नहीं अभी ब्लूटूथ, इसका ब्लूटूथ शायद, ब्लूटूथ क्या बोलते हैं ना शायद, ये वो है कि वाईफाई वगैरह है ना, उसको बंद कर दीजिए शायद। अच्छा देख लीजिए। अच्छा दीजा द्रोणाचार्य, हाँ अच्छा ठीक है। जिन अभिमन्यु का और द्रौपदी का लड़का का जो बच्चे लोग का स्मरण कर रहे हैं, सुहोत बाला दीजा द्रोणाचार्य का वध हुआ है गुरु जी का, इसको स्मरण कर रहे हैं, और सुहोत दृष्टदुम्नादयो, दृष्टदुम्न का वध हुआ था। मित्राणी विराट मित्र है ना, उनका स्मरण कर रहे हैं, मेरे लिए सब सबका वध हुआ है, कौन सोच रहे हैं? और भगवान भी समझा रहे हैं तुम्हारे लिए नहीं, भगवान जितना समझा रहे हैं ना उनका दुख उतना बढ़ता है। अरे ज्ञान देने से दुख लाघव हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है ये नहीं समझना चाहिए। और मित्राणी विराट प्रभुति पितरो भूरिश्रवा भ्रातरो दुर्योधनादयो, देखो कितना बड़ा महात्मा है, दुर्योधन के लिए भी सोच रहे थे, कौन युधिष्ठिर, दुर्योधन का पद हो गया। महात्मा ये लोग होते हैं। हाँ ये तो मोह सुंदर तत्व देखिए, इसे गंदा आदमी है महाभारत, ये भागवत ना बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ाई करना चाहिए, रस मिलता है। एक है महाप्रस्थान, कथा में करता महाप्रस्थान, आजकल छोड़ दिया हूं ज्यादा भागवत कथा, मंदिर में ज्यादा जाता हूं, महाप्रस्थान पांडव लोग महाप्रस्थान करते हैं, उसी में है एक प्रसंग आप देख लीजिए। पर सुबह सुबह जाकर युधिष्ठिर महाराज जाते थे किसका पास? धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए। आप प्रणाम करेंगे? कोई संसार में आदमी जो प्रणाम करेंगे धृतराष्ट्र जैसे आदमी को? कितना गंदा काम किए हैं, जीवन भर दुर्योधन को सपोर्ट किए, लेकिन गुरु जी का पूजा कर रो रहे थे जब युधिष्ठिर चले गए ना, अरे धृतराष्ट्र चले गए ना, रो रहे थे। महात्मा लोग के हृदय ऐसा होता है, उदार थे, किसको दुश्मन, ये मेरा दुश्मन ही है, कभी नहीं सोचते। ये सब लोग का वध हो गया है ना, और गुरुव भ्रातर दुर्योधनादय हो, गुरुव द्रुपदादय हो, द्रुपद गुरु है ना, गुरु का मतलब पिता भी गुरु होते हैं। दीजा द्रोणाचार्य सबके लिए सोच रहे थे, शोक कर रहे थे, मेरे लिए सब लोग शरीर छोड़े और मुझे नरक जाना है, भक्त कभी नरक नहीं जाता है, पता है आपको? आप लोग का ये, हम लोग का सबसे बड़ा भाग्य नरक से बच गया, पता है ना आपको? नरक हम नहीं जाएंगे, बैकुंठ नहीं जाएंगे, ये तो अलग बात है, नरक कभी नहीं जाएंगे। कौन नरक नहीं जाता है? अजामिली प्रसंग आप नहीं सुने? सकृत कृष्ण मन पदारविंदयो निवेशित तद गुण राशि जयरिहम। सकृत मन कृष्ण पदारविंदयो, एक बार कृष्ण की चरण कमल जो मन रख लेता है, बोलता है ठाकुर जी मैं आपका, वो कभी भगवान के गुण है, रूप है, उसको स्मरण कर लेता है एक बार। सकृत सकृत मना कृष्ण पदारविंदयो, एक बार भी स्वप्ने न पश्यन्ति तद भटा। स्वप्न में तीन चीज को नहीं देखता है, जम जमराज को, जमदूत को, और जम का जो रस्सी है पास है उसको नहीं देखता। स्वप्न में स्वप्नम अपि पश्यन्ति, अच्छा स्वप्न में नहीं दर्शन करता है, लेकिन पाप किया है ना, जैसे हम लोग सोचते हैं मैंने तो बहुत पाप किया, चिर निष्कृतान, हमको प्रायश्चित का कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोग जाते हैं ना कुंभ मेला में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, नहाते हैं, पुष्कर जाना है मुझे, इधर जाना है, मैं पाप किया हूं, हम लोग को कहां नहीं जाना है? हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, कहां भी हमको नहीं जाना है, प्रायश्चित कोई जरूरत नहीं। हरिनाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है, ये भक्ति है, विश्वास पूर्वक करना चाहिए। भक्त कभी नरक नहीं जाएंगे, लेकिन दैन्यता उनका संपत्ति होता है। वो सोचता है हर समय पापी हूं, मैं नरक जाऊंगा, वो जाएंगा नहीं, लेकिन सोचता है मैं ही पहले नरक जाऊंगा, मैं इतना पापी हूं। वो सोचता है मैं नरक जाऊंगा, लेकिन ठाकुर उनको गोलक वृंदावन ले जाएंगे। भक्त लोग सोचते, उनका प्राइड नेचर नहीं है ना, वो सोचता है मेरा गलती हो गया, मेरा मन में अभिमान है, मैं ठाकुर जी के पास कभी नहीं जा सकता हूं। जिंदगी भर सेवा करता है, भक्ति करता है, लेकिन सोचता है ऐसा, इसलिए ठाकुर उनको गोलक वृंदावन ले जाते। अभिमान कभी नहीं रहता है, अभिमान तो ब्राह्मण का रहता है, भक्त का जो अभिमान इस शोभा नहीं है। तिलक लगाने के बाद यह अभिमान शोभा नहीं होता है। जिस लोग अभिमान होते हैं, अभिमानी होते हैं, वो भक्त नहीं है, ये विरुद्ध है भक्त का। मन में अभिमान कभी नहीं रहना चाहिए। भक्त लिखे ना एक परे रे उद्वे कर दिया छी जत दिया छी परे रख ले, उसमें है ना, निज सुख लागी पापे नाई डरी, हमारा जीवन इसमें उपग है, देख लीजिए। पर सुखे दुखी सदा मिथ्यावासी, पर दुख सुख कर, गर्भ दंभ गर्भ विभूषण एक शब्द है ठाकुर जी, मेरा दंभ, दंभ हिंदी में दंभ बोलते हैं ना, और गर्भ ये मेरा विभूषण है, ये अर्नामेंट जैसा है, मेरा जीवन में इतना बड़ा पाप है। भक्त इस जिंदगी भर सोचता है नाम का, आपको पता है सही नाम हो रहा है और गुरु का कृपा मिल गया, गुरु जी का कृपा मुझे मिल गया, ठाकुर जी का कृपा मिल गया, इसका स्वरूप क्या है, प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण? यही प्रमाण अंतर में सोचेंगे कि मेरा भक्ति नहीं है, मैं सबसे बड़ा गंदगी आदमी हूं, मन में ये भावना होता है, ये बढ़ता जा रहा है। दैन्यता जो है ना, ये दैन्य, दैन्य समझ रहे ना, दैन्य जो हम्बलनेस, ये है भक्ति का जननी, मां पोषण करती है दैन्य, ये दैन्य जो मां जैसे है ना, वो आकर्षण करती है भक्ति महारानी को, आजा गोद में, आजा मेरा गोद में, आजा। हमारा भीतर अगर दैन्य नहीं रहेंगे, भक्ति महारानी नहीं आएंगे। तो गुरु जी का कृपा जब मिल जाता है ना, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन सोचते हैं क्या, अनक्वालिफाइड है, मेरा योग्यता कुछ नहीं, मन में कभी संतोष नहीं होता है, और करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए प्रयास लगे रहता है, सेटिस्फिकेशन कभी नहीं होता है मन में, ये कृपा का फल है। और दैन्यता बिल्कुल, कृपा कृपा क्या, कृपा हैवी है ना, गुरु जी को जो कृपा है ना बहुत हैवी है, जो हैवी चीज आपका ऊपर कोई रख लेता है तो आप क्या हो जाता है, दब जाता है ना, ऐसे कृपा जब आ जाता है ना छोटा हो जाता है, नेचुरल स्वाभाविक भाग से हम स्वाभाविक भाव से हम हम्बुल हो जाते हैं, अभी स्वाभाविक नहीं, परिस्थिति पर हम विनम्र होते हैं लेकिन भीतर तो अभिमान है, ये रहता है। कृपा जब तक नहीं मिलता वो नहीं जाता है, इसलिए हम एक कंगाल है कृपा के लिए। अभी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब बचे बचे। ये भक्ति जीवन में कुछ भी समाधान नहीं होता है जब तक ठाकुर जी का गुरु जी का कृपा नहीं मिलता है, और कृपा का इस स्वरूप हमको छोटा बना देता है, अभिमान नहीं रहता है। तो मैं नरक जाऊंगा युधिष्ठिर महाराज ये बोल रहे हैं, और शास्त्रकार बोल रहे हैं विश्वनाथ चौपाठ कमेंट्री में ये लिखे हैं, देखो तुमको नरक क्यों जाना है, तुम्हारे लिए तो ठाकुर जी ने अश्वमेध यज्ञ किए हैं ना, भगवान किए हैं, प्रभु जी की उपस्थित में कृष्ण की उपस्थित में अश्वमेध यज्ञ हुआ है, तुमको नरक कभी नहीं जाना है तुमको। ये बोल रहे नहीं, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, राजा लोग दंड देना चाहिए, पहले इसके भर से राजा लोग दंड देना चाहिए, राजा का ही अधिकार है, राजा जिसको दंड देते हैं वो शोधन हो जाते हैं, जैसे पहले जमाने में आपको पता है ना मनु महाराज बोलते हैं फांसी फांसी में लगा देते थे, ये सही है, मनु महाराज मनु संहिता में लिखा है, राजा जिसको फांसी दे देता है ना दूसरा जन्म उसका अच्छा होता है भला होता है। तो आप जो किए हैं ना वो तो पापी थे, महाभारत युद्ध में मर गए, आप तो राजा थे, बोले मैं राजा नहीं था, राजा था दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं राजा तो उस समय दुर्योधन था, तो दुर्योधन तो राजा था, मैं लोभ बस होकर ये युद्ध किया राजा बनने के लिए, ये मोह हो गया, ठाकुर जी मोह पैदा किए, क्योंकि पितामह भीष्म देव ना तब तू बोलेंगे ये सुनेंगे काल से, इसलिए आज मुझे ये खत्म करना है। कितना सुंदर बात बोले पितामह भीष्म ने, ये बहुत बड़ा प्रसंग है, तुम क्या हो दुर्योधन, तुम क्या युधिष्ठिर, तुम क्या सोच रहे हो, तुमको पता है तुम कौन हो, हाँ ब्लूटूथ इसको ये ना इसको इसको बंद करना है, पता नहीं हो, ठीक है ठीक है, आज कल से थोड़ा देख लेना, मैं तो राजा नहीं था, बार बार वो बोल रहे हैं मैं तो राजा नहीं हूं, और राजा नहीं भी था उस समय, अभी तो राजा नहीं बनूंगा, राजा उस समय दुर्योधन था, और मैं लोभ बस पाप बस होकर मैं युद्ध किया, और ठाकुर जी ने मेरे लिए ही युद्ध किए, मेरे लिए ये नहीं बोल रहे कि ठाकुर जी मेरे लिए व्यवस्था किए, वो बोल रहे मैं ही सब किया, मोह आ गया ना, और पितामह भीष्म ज्ञान देंगे, अरे वही वही बात बोलेंगे, ये सब काल ने किया है, सर्वम कालम कृतंग मन्नी भवताम जदा प्रियम, आप कौन है, काल है। अरे अगर युधिष्ठिर प्रश्न करें काल कौन है, दिखा दीजिए काल कौन है, बोल रहे तुम्हारा पास जो है वो कृष्ण है, कृष्ण पास में थे, समझ रहे ना, हम डरना नहीं चाहिए, टाइम टाइम बोलते ना अभी टाइम फेवरेबल नहीं है, हाँ कभी कभी भक्त लोग ऐसे बोलते अभी मेरा फेवरेबल नहीं है, काल है, जैसे महाभारत में देखे ना क्या बोल रहा था वो, मैं काल हूं, हम इसको नहीं मानते, मैं काल हूं कौन बोले, कृष्ण बोल रहे हैं, काल भगवान का एक स्वरूप शक्ति है, एक भगवान का एक शक्ति है, इसका मतलब नहीं काल से भगवान से बड़ा काल है, ये नहीं, सिद्धांत विरुद्ध चीज है, भगवान कहां गीता में क्या बोले, कालो हम सर्वक्षय कृत, मैं काल हूं, काल भगवान की शक्ति है, भगवान का अधीन में काम करता है, इसीलिए जो ये जो हस्तरेखा है जो कुंडली इशो है ना इस वो जो कैलकुलेशन करते हैं ना काल के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग क्या है भगवान के अधीन में, सुपरविजन डायरेक्ट भगवान की चलता है, इधर हम डरना नहीं चाहिए कभी। तो मैं राजा नहीं था, राजा था दुर्योधन, इसीलिए दोष मेरा है, मैं तो नरक जाऊंगा, और ठाकुर जी बोल रहे हैं देखो तुम अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है तुम्हारे लिए, तीन अश्वमेध यज्ञ हो गया है, तुम्हारा कुछ भी पाप नहीं है, तुम राजा बन जाओ, बोले मैं अश्वमेध यज्ञ को नहीं मानता हूं, क्यों नहीं मानता हूं, जिस प्रकार गंदे पानी की कीचड़ में जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता है, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशु के बलि देकर नहीं किया जा सकता है। इतना सुंदर युक्ति कर रहा है। क्या अश्वमेध यज्ञ आप कर दिए तो इसको मैं मान लूंगा, एक पशु मेरे लिए ही मान, मेरा पाप था, एक पशु को मारकर फिर मेरे पाप का प्रायश्चित किया, ये प्रायश्चित नहीं। इसका मतलब क्या है? वेद को भी इनकार कर दिया ठाकुर जी, कई योजना था। तब ठाकुर जी ने बोले, ठीक है तुम नहीं मानते हो, अभी पितामह भीष्म के पास चलेंगे तुम। जब ठाकुर जी बोले पितामह भीष्म के पास तुम चलेंगे, तब बोले हाँ वो जो बोलेंगे मैं करूंगा। भाई व्यासदेव बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, नारद बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग मुनि ऋषि लोग बोल रहे हैं, उनका बात तुम नहीं माने। अभी ठाकुर जी बोल दिए कि पितामह भीष्म के पास जाना है, और वो जो बोलेंगे तुम मानेंगे? बोले हाँ मैं मानूंगा, क्योंकि ठाकुर जी भीतर बोल दिए कि तुम हाँ बोलो, कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तुम्हारा का बड़ा काम नहीं, काम मेरा है। काम ठाकुर जी का था, युधिष्ठिर का नहीं था, क्योंकि उनका जो मिशन, मैं बोल रहा था मिशन क्या हिंदी में बोलता है, ये मिशन हाँ लक्ष्य जो है, ठाकुर जी का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता है जब तक भक्त को बड़ा नहीं करता। चाहे असुर का संगार हो जाए, धर्म का प्रतिष्ठा हो जाए, ठाकुर जी का मन सुख नहीं होते। ठाकुर जी का सबसे बड़ा काम यही है, भक्त को सुख देना, भक्त को बड़ा बनना। जो गए ना ठाकुर जी सुग्रीव राम अवतार में, देखिए सबरी का पास गए, सुग्रीव का पास गए, क्या डायरेक्ट लंका जाना ठाकुर जी के लिए मुश्किल था क्या? भक्त को जब तक ठाकुर जी कोई भी अवतार में भक्त को बड़ा नहीं करते ना, उनका मिशन कंप्लीट नहीं होता है, मन सुख नहीं होता। ठाकुर जी भीतर बैठ कर बोल दिए, बोलो हाँ बोलो, तो अभी सब चलने लगे। देखो ठाकुर जी क्या क्या किए हैं पांडव लोग के लिए, सब कानून तोड़ दिए। बोले थे क्या, मैं क्या बनना है, मुझे सारथी बनना है। कितना दिन के लिए सारथी बनना है? 18 दिन के लिए, 18 दिन के लिए सारथी बनना है, लेकिन एक्स्ट्रा दो बार सारथी बन गए, ये कानून था क्या? तो बोले थे पहले ना 18 दिन के लिए मुझे सारथी बनना है, लेकिन जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, कौन सारथी कौन बने थे? देखो देखो कौन सारथी बने थे, प्रेम। बस कानून ठाकुर जी के पास नहीं चलता है। वो ठाकुर जी क्या है, निरपेक्ष है या भक्त पक्ष है? समहंस रघुतेश, हाँ भगवान का एक स्वभाव होता है। कितना ठाकुर जी का स्वभाव है, सबसे बड़ा स्वभाव है ये, भक्त सपक्ष है। इसीलिए बोल दिए, गीता में श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है, याद आया था भूल गया मैं, नहीं स्त्री वैश्य तथा शूद्रा स्त्रियों भी जानती पराम गति। पहले क्या, जे पिशु पाप जीव नया स्त्रियम वैश्यम तथा शूद्र स्त्रियों भी जानती पराम गति। मैं पापी नहीं मानता हूं किसको, मेरा मुझे मेरा भजन करता है ना, मैं पकड़ लेता, भक्त सपक्ष है। हम लोग बहुत होशियार रहना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। हम लोग का भाग्य कितना महान है, एक सत परंपरा में ठाकुर जी साक्षात भगवान के अवतार है, जैसे प्रभुपाद लोग आए, साक्षात भगवान के 27 अवतार है, त्रिकालज्ञ है, उनको पता था। हमारा गुरु जी ने हमको उसको बताया, उनका लाइफ एक्सपीरियंस में, हम लोग ऐसे नहीं, उनको पता था, भीतर का बात बिल्कुल बोल देते थे, बिल्कुल बोल देते थे। जैसे हमारा गुरु जी जब घूमते थे, ढूंढ रहे थे गुरु, मुझे ऐसा एक गुरु चाहिए जिसको चैतन्य महाप्रभु पता है, और महामंत्र पता है, और भागवत पता है, और गए तो वृंदावन घूमते घूमते हिमालय वो आ गए, और मन में यह था कि मुझे संन्यास लेना है, संन्यास लेना है मुझे, और प्रभुपाद से मिले ना, प्रभुपाद बोल दिए तत्क्षणात, एक 10 मिनट से पहले बस दर्शन हुआ, बोल दिए आई वॉन्ट टू गिव यू संन्यास। उनको कैसे पता चला कि मैं संन्यास लेने वाला हूं? ये भगवान के लोग हैं। जब भुवनेश्वर गए ना, उस समय वो जंगल थे, और प्रभुपाद ही बोल दिए, दिस प्लेस विल बिकम द हार्ट ऑफ दिस सिटी. आज सबसे कीमत वाला जगह वही है, वो जंगल था. उनको कैसा पता चला? कितना चीज प्रभुपाद बोल दिए है ना, भगवत भगवत आवेश अवतार है. उनको पता है, कोई बोल सकता है 10,000 साल के लिए बोले है ना प्रभुपाद ये मिशन चलेगा? कैसे पता होगा उनको ये चलेगा? ये कोई सेंटिमेंट चीज नहीं है, आपको पता चलेगा बाद में. ये सही बात है. भगवत आवेश अवतार होते भक्त लोग, हम सब परंपरा में है. हमारा दोस्त ठाकुर जी कभी नहीं देखते हैं. अगर दोस्त देखेंगे ना, कोई भी हम माला पकड़ने वाले कोई भी एक भी नहीं रहेंगे. समझ रहे हैं ना आप? सुबह जगते हैं तो कितना गंदगी चिंता आता है देख लीजिए. ईर्षा है, द्वेष है, नाम करते करते कितना हरे कृष्ण बोलते हैं, मन कहां जा भागता है कुत्ता जैसा इधर उधर बल खाने के लिए. फिर भी इसे आदमी को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते. ठाकुर जी का महिमा है बहुत. ठाकुर जी को पता है हम कलयुग के आदमी है. लेकिन हम लोग का बड़ा भाग्य है कि सब परंपरा में आए हैं. असत आचार्य लोग की शरणागतम है. इस शरणागति बढ़ाना चाहिए आचार्य लोग का ऊपर, परंपरा के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए. तब तो ये हम बलवान बन जाएंगे. ठाकुर जी का मिशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक भक्त को बड़ा नहीं करते. मैं यही बोल रहा था ना, दो बार, एक बार और एक बार यही रथ में बैठे थे. उनका सारथी था, वो द्वारका जाने वाले थे, अभी रथ से उतर गए, अभी आ रहे कुरुक्षेत्र. युधिष्ठिर का साथ और अर्जुन का रथ में क्या बने, क्यों सारथी बने? अर्जुन का रथ में क्यों सारथी बने? क्योंकि पितामह भीष्म का लक्ष्य था, उनका आराध्य कौन है? पार्थ सारथी. पार्थ सारथी ये रूप देखना है. अर्जुन का रथ में कृष्ण सारथी है. भक्त का जो अभिलाष है ना, लालसा जो है ना, वो पूर्ति होता है, होता है. निराश कभी नहीं होना चाहिए. संग करके ठाकुर जी मैं आपका चरण कमल मुख कमल दर्शन करूंगा, आपका सेवा करूंगा. मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियावास नयन हरिव सदा जुगल रूप राशि. प्रार्थना करते ना, अभिलाष संग करते हैं इसीलिए, भागवत सुनते हैं इसीलिए. अभिलाष बढ़ाना चाहिए. ठाकुर जी का मुख दर्शन करूंगा, ठाकुर जी का सेवा करूंगा, गुरु जी का दर्शन करूंगा, गुरु जी का स्वरूप दर्शन में करूंगा. सुख दुख क्या है हम लोग का? कुछ नहीं. सुख दुख जो है अनर्थ है, अनर्थ कुछ नहीं हम लोग के लिए. अनर्थ क्या? सबसे बड़ा अनर्थ है ये खुद का जो सुख और दुख का चिंता, भक्त लोग के लिए सबसे बड़ा अनर्थ है. और कुछ अनर्थ नहीं, इसे सब कुछ पैदा होता है. हमारा सुख दुख कुछ नहीं है. मैं आपका हूं, अगर मैं हम ठाकुर के हो गए तो सुख दुख किसका है? ठाकुर का. तो चिंता क्या करना है? हमको जाना है, चलना है हमको ठाकुर जी की दिशा में. सुतवाच इति भीत प्रजा दोहत सर्वधर्म विविश्चया ततो विनसनम प्रागत जत्र देवव्रतो पतत. देवव्रत उनका नाम था. देवानम इव व्रतजस्य स देवव्रत. देवानम इव व्रत ब्रह्मचर्य च स. ब्रह्मचारी थे ना, अखंड ब्रह्मचारी थे. 400 साल का अभिज्ञता थे, ब्रह्मचारी थे, तेजस्वी थे, धर्मविद थे, धर्मविद थे. अपपत अपतत जहां सोए थे सरसैया पर. डर भी लग रहा था प्रजा द्रोह हो जाएगा. युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे मैं राजा बन जाऊंगा ना, तब लोग हल्ला गुल्ला करेंगे. ये राजा बनने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ. लेकिन ठाकुर जी बोल दिए चलो, भीतर से बोल दिए चलो, क्योंकि अभी आ गया. इतना सुंदर पितामह भीष्म का जो महाभारत में किए है ना, जो क्या जो कलर कपड़ा, जो सादा कपड़ा पहनते थे वो सादा कपड़ा दिखने के लिए बहुत सुंदर. गंगा पुत्र है ना भीष्म. और उनका रस क्या है? वीर रस. कृष्ण का साथ मुझे फाइटिंग करना है, कृष्ण को सुख देना है. इतना सुंदर भाव द्वारका पार्षद है ना, जीव गोस्वामी संदर्भ में लिख रहे हैं, जितना दुर्योधन भी द्वारका पार्षद है। क्या सोच रहे हैं आप, वो सब लोग द्वारका के पार्षद है। जीव गोस्वामी संदर्भ में लिख रहे हैं, जो असुर लोग होते हैं ना, जैसा पुतना बकासुर अघासुर, वो लोग गोलक वृंदावन में, ये गोलक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वो तटस्थ है, वो ऐसे कुछ काम नहीं है। इस ब्रह्मांड से अलग ब्रह्मांड में जाते हैं, इस ब्रह्मांड से अलग ब्रह्मांड में जाते हैं, उनका इतना रोल नहीं है कुछ। ये भी भगवान के पार्षद है। और पुतना के जैसे कहां का, जैसे पितामह भीष्म है, वो नित्य पार्षद है, लेकिन इस इधर शब्द आएगा वसुत्तमः, इसका ऊपर टीका आचार्य लोग लिखे हैं, वसु पितामह भीष्म के शरीर में आविष्ट हुआ था। जैसे पांडव नित्य पार्षद है, उनका शरीर में पांच देवता आविष्ट हुए थे सेवा करने के लिए, लेकिन वो सब नित्य पार्षद है। तो कल से हम सुनेंगे, किसे प्रार्थना करेंगे, सबको सम्मान देंगे और प्रवचन शुरू कर देंगे। बोलना नहीं पड़ेगा क्या प्रवचन देना है, हम टॉपिक ऐसा, भगवान कृष्ण टॉपिक नहीं बोलेगी, आप कुछ ऐसे बोलिए कि जैसा राजा बनेगा, नहीं। महाभारत में तो है, कृष्ण बोल रहे कि आप थोड़ा उनको समझाइए राजा जैसा बनना चाहिए, भागवत में ऐसा नहीं। सिद्धार्थ शुरू कर दिए और देखने लगे, रोने लगे पांडव लोग को देखने लगे, रोने लगे, प्रेम से रोने लगे, क्यों पता है आपको, उनका अभिलाष पूर्ण हो गया। तो मैं नहीं देख सका, ठाकुर जी क्यों लाए युधिष्ठिर को, एक एक युधिष्ठिर राजा बनेगा ना, वो अभिलाष किसका था, भीष्म का था, इसीलिए राजवेश में लाए, सब राजवेश में आए, ऐसा आना उचित नहीं है। वो सहसैया पर है, राजवेश में क्यों आए, कंट्राडिक्टरी होता था, रसावास नहीं, रसावास नहीं, उनका अभिलाष यही है। जैसे ठाकुर जी नृसिंह अवतार में ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उनको, मैं आदेश देता हूं प्रहलाद को राजा बनाओ, क्या किसका अभिलाष था, हिरण्यकशिप का अभिलाष था, इसलिए आज हिरण्यकशिप ठाकुर जी का गोद में पूजा भी होता है। मैं तो सोचता हिरण्यकशिप कितना भाग्यवान है, देख लीजिए जब आरती होता है, आप जब आरती करते हैं हिरण्यकशिप की आरती नहीं होता है, जो भोग लगाते क्या ठाकुर जी उनको नहीं देते हैं, वो अकेला खा लेते हैं। ये तो मैं कभी कभी ये सोचता हूं कितना भाग्य है, क्यों भाग्य है, प्रहलाद जैसा लड़का को जन्म दिए। भक्त संबंध बहुत बड़ा संबंध, आप कभी दुख नहीं करना चाहिए, आपका वंश में कोई हो, चाहे पति हो पत्नी हो लड़का हो लड़की हो, भक्त हो गया ना, आपका परिवार का मंगल ही मंगल है, बाजी बाजी में मंगल है। कोई विश्वास करे या नहीं करे, मेरा तो बिल्कुल विश्वास है इस सिद्धांत पर। मैं भागवत पढ़ता हूँ भगवान की दया से, अभी तो पढ़ाई थोड़ा कम गया है, लेकिन ये भक्ति तत्व में जब पढ़ता हूँ ना, मुझे बिल्कुल जम जाता है मेरा दिल, हाँ ये सत्य बात है। अच्छा लोग ऐसे लिखे हैं ना, ठाकुर जी क्यों प्रहलाद महाराज को राजा करने के लिए, विधि क्या है, राजा कौन बनना चाहिए, बड़ा लड़का बनना चाहिए, सनलाद आह्लाद लाद, ये प्रहलाद बाद में, हिरण्यकशिप का जो अभिलाष था, मेरा प्रहलाद राजा बनना चाहिए ठाकुर जी उनको ही राजा बनाए, सबका अभिलाष पूर्ण करते हैं। इसीलिए आज देखिए उनका पूजा, हिरण्यकशिप उनका नाम लेते हैं हम प्रणाम में। भक्त का जीवन इतना सुंदर जीवन है, बड़ा उत्साह से भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आचार्य लोग छोड़कर हमको कितना संपत्ति दे कर गए हैं, गुरु जी नहीं जाते हैं, गुरु जी कभी संसार नहीं छोड़ते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं, वो तो संसार का आदमी नहीं है ना, भगवत धाम चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए संपत्ति छोड़कर जाते हैं, क्या संपत्ति है, ये उनका शिव विग्रह, उनका मिशन, ये उनका संपत्ति है। इसको हम सेवा में लगेंगे तब तो अनुभव होगा, सेवा नहीं करने से, जिम्मेदारी नहीं लेने से ममता नहीं बढ़ता है, अपनापन नहीं होता है, ममत्व भावना नहीं आता है, तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता भजन से। ये परंपरा बड़ा सुंदर गौड़ी परंपरा है, बहुत सुंदर परंपरा है, भक्ति परंपरा है। तो कल सुनेंगे पितामह।